ओम शांति शांति वन के इस विशाल प्रांगण में आप सभी ब्रह्मावत्सों का स्वागत है और हम सबके सम्मुख हमारे आदरणीय चक्रधारी दीदी जी हैं जिनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। इस नुमह शाम के समय हम उनका भी स्वागत करते हैं। दीदी 55 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका जब इस ईश्वरीय परिवार में आए थे और 52 वर्षों से अधिक समय हो चुका है जब आपने अपना ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं हेतु समर्पित किया। आप दिल्ली में शक्तिनगर डेरावाल और उससे संबंधित सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं और रूस देश, आप सबने नाम सुना होगा, रूस देश और जो उसके आसपास देश हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, उसकी भी आप डायरेक्टर हैं, क्योंकि रशिया को बाबा विशेष याद करता है, जहां हमारा भविष्य में पिकनिक स्पॉट्स बनेंगे, पिकनिक करने के लिए जाएंगे, वहां भी आप बाबा ने आपको निमित्त बनाया वहां की सेवाओं के लिए। और महिला प्रभाग, जो इस विश्व की आधी आबादी है, उसकी भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बाबा मम्मा की गोद में तो आपने अपना ईश्वरीय जीवन आगे बढ़ाया ही है। ऐसी दीदी जिसे हम आज अनमोल रतन सुनेंगे और अपने जीवन का श्रृंगार करेंगे, आदरणीय दीदी जी के लिए जिसने भगवान को अपना बनाया और जगत को उसका मार्ग बताया, वो तपस्वी मूरत सम्मुख हम सबके देखो, हर दिल हर मन हर्षाया।
ओम शांति। इस हॉल के मंच की सेवा का कार्यभार शक्तिनगर व उससे संबंधित सभी सेवा केंद्रों का रहा है और हमने ऐसा सोचा क्योंकि आज ही यहाँ आना हुआ और पता चला कि सेवाधारी 7,000 के लगभग पहुंच चुके हैं, तो मैंने मन में यही सोचा कि जो सेवाधारी आए हैं वे अवश्य सेवाओं में व्यस्त होंगे, वो कोई हॉल में तो आकर बैठेंगे नहीं। लेकिन मुझे अचानक मुन्नी बहन ने कहा कि बहुत सेवाधारी सब हॉल में आकर बैठ गए हैं, इसलिए आप ही क्लास कराना। तो प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, वो तो कभी भी सुना दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप सब तो बड़े प्यार से आकर बैठ गए और अवश्य है आज आपको मालूम है कि आज सेवाधारी अथवा जो भी सभा में या प्यारे मधुबन के इस शांतिवन में पहुंच चुके हैं, उन सबको आज ही सौगात मिलनी है, इसलिए विशेष सौगात के लिए भी आप पहुंचे हैं। लेकिन जब तक सौगात का कार्यक्रम प्रारंभ हो तब तक मैं बाबा की कुछ बातें आपको अवश्य सुना दूंगी। जैसा कि आप में से बहुतों ने सुना होगा और विदेश के बहुत से देशों में बहुत समय से 3 दिन का भय की अवस्था चल रही थी कि 21-23 दिसंबर एक विश्व का भारी महाविनाश होगा। यहां तक कि कई स्थानों पर ईमेल भी पहुंच गए कि 22 तारीख को सूर्य चांद और धरती एक ही दिशा में आछेंगे, जिससे पूरे देविश्व में अंधकार हो जाएगा और उसके पश्चात एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी। और जब अपने ब्राह्मण कुलभूषण सुनते हैं कि बहुत सुंदर दुनिया आएगी, तो उनका सुनकर खुशी होती है कि सुंदर दुनिया तो हमारी सतोगुनी दुनिया ही आएगी, और उस दुनिया में कौन होंगे, हम ही तो होंगे। ये खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। ये सत्य है, खुशी सदा ही रहनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी अंदाजा जरूर लगा लेना चाहिए कि ऐसी खुशियों का विश्व आने से पूर्व भयंकर विनाश भी तो कहा गया है। उस भयंकर विनाश का सामना करने के लिए, अतः ऐसी परिस्थितियों में अपनी स्थिति को एक सम बनाए रखने के लिए, क्या हम सब बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे तैयार हैं? जबकि हमको हमारे प्यारे बाबा बहुत समय से बता रहे हैं कि बच्चे, इस विश्व का बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, और उस विश्व के परिवर्तन होने से पूर्व तुम बच्चों को स्वयं में परिवर्तन लाना है, और वो परिवर्तन जो आपकी सतो प्रधानता की स्थिति, सतो सामान्य नहीं, सतो प्रधानता की स्थिति तक बच्चों को पहुंचना है। तो हम सब जब ये बात सुनते हैं तो अपने आप से हम अवश्य पूछ कर देखें कि सचमुच उस सतो प्रधान स्थिति पर आरूढ़ रहने के लिए हमने कहां तक पुरुषार्थ किया है और कहां तक पुरुषार्थ और करने का मार्जन है। ये ठीक है, दुनिया कहती है कि इसके बाद सुंदर सृष्टि आएगी, और हमें बाबा द्वारा ज्ञान मिला है कि तमोगुणी सृष्टि के बाद सतोगुणी सृष्टि आती है, जैसे कि रात के बाद सवेरा आता है। लेकिन सवेरा उन्हीं के लिए आता है जो जागते हैं और उगते सूर्य को देखते हैं, दिन में काम व्यवहार में लग जाते हैं, और जो कमरा बंद कर पड़े ही रहते हैं उनके लिए सवेरा नहीं आता है, वो अंधकार में ही रहते हैं। तो हमें हमारे प्यारे बाबा आने वाले समय की पहचान भी देते हैं, और उस आने वाले समय से पूर्व बच्चों को क्या करना है इस बात के भी हमें कर्मठ बनाते हैं। हमें हमारी सेवाओं की तरफ, हमें हमारे स्वरूप की तरफ इशारा खिंचवाते हैं। तो मैं बात यही शुरू कर रही थी कि जब लोगों में भय हुआ तो हमारे भी बहुत से सेवा केंद्र मधुबन तथा विश्व के अन्य सेवा केंद्रों पर भी योग के विशेष कार्यक्रम रखे गए। अब कोई ये समझेगा कि क्या आपको भी भय हुआ जो आप भी विशेष योग के कार्यक्रम रखने लगे? भय की बात नहीं है, लेकिन जब चारों तरफ भय का वातावरण होता है या नेगेटिविटी का, नकारात्मक चिंतन का वातावरण होता है, तो उस वातावरण का प्रभाव किसी भी प्राणी को आ सकता है। अब उस प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए एकमात्र उपाय है कि नकारात्मक चिंतन न सुने, न सुनाए, न चित्त पर लाए, लेकिन अपने मन और बुद्धि को एक बाबा में एकाग्र कर लें। जिससे अपनी सेफ्टी का, अपनी सुरक्षा का किला मजबूत हो सके, ताकि ऐसा नकारात्मक भय का वातावरण हमें हमारी स्थिति पर प्रभाव न डाल सके। और साथ ही साथ जब हम बाबा की याद में निश्चिंत होकर शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं, तो वे अनुभव के वाइब्रेशंस जो चिंतित और अशांत आत्माएं हैं, उनको चिंता से, अशांति से सामना करने के लिए उन्हें से योग्य बनाते हैं, अर्थात बल देते हैं। तो ऐसा समय जब आता है, जिसे किसी भी प्रकार के भय का समय समझो, अशांति का समय समझो, या किसी दुख का समय समझें, तो सर्वप्रथम स्वयं की सुरक्षा की आवश्यकता होती है और उसके साथ अन्य आत्माओं की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी ये स्थिति इतने सुंदर वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो अशांत चिंतित दुखी आत्माओं को शांति सुख में और सकारात्मक चिंतन की स्थिति में स्थित कर सकती है। इसलिए ऐसा समय एक सेवा का समय होता है। सेवा समझकर हमें विशेष कार्यक्रम बनाना ही चाहिए। मैं कभी देखती हूँ, एक दिन दीपावली होती है, एक दिन रावण के जलने का दुशहरा मनाया जाता है, एक दिन रक्षाबंधन का पर्व होता है, लेकिन राखी बेचने वाले रक्षाबंधन के दो चार दिन पहले ही राखियां लगाकर जहां तहां बैठ जाते हैं। घर में रहने वाले भी गरीब परिवार एक खटिया बिछाकर राखी लगाकर बैठ जाते हैं। चार घंटे का मेला होता है, चाट भरने वाले क्या तो गुब्बारे वाले क्या तो खेल खिलौने वाले सभी पहुंच जाते हैं कि आज हमारी कमाई का दिन है। चाहे ये मेला चार घंटे का है या एक घंटे का है, लेकिन ये हमारी कमाई का दिन है। इसलिए वो सब वहां पहुंचते हैं कि हम कमाई कर लें। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं भी दुख है या दुख का वातावरण है, भय है या भय से भयभीत कोई प्राणी है या चिंतित कोई मनुष्य है, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी विशेष ऐसी आत्माओं के सहयोग के लिए खास योग तपस्या करनी चाहिए। ये उन आत्माओं की सेवा भी है और आप बच्चों की बहुत बड़ी कमाई भी है। कमाऊ बच्चे हमेशा ये समझते हैं कि थोड़ी भी कमाई हो, कुछ कमाई होनी जरूर चाहिए। हम ये नहीं कि हम किसी के लिए आशा रखते हैं कि दुखी हो तो हम योग लगाएं। बाबा तो हम बच्चों को कहते ही हैं, समय दुख का चल रहा है, लेकिन बच्चे तुम इतनी योग युक्त स्थिति में रहो जो तुम्हारे योग के वातावरण विश्व की आत्माओं को दुख को झेलने के योग्य बना सके। अशांति के वातावरण में वो कुछ शांति का अनुभव कर अपनी समस्याओं को सुलझा सके। इतनी मन में सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की भावना और मंगल भावनाएं बच्चों के हृदय में होनी चाहिए, क्योंकि आप और हम समझते हैं। मान लीजिए बाहर गर्मी है बहुत तेज, तो स्वाभाविक है घर के अंदर भी गर्मी आएगी, और केवल घर में ही नहीं, बाहर जाते हैं तो गर्मी का उपाय बरत लेते हैं। घर में होते हैं तो तो भी पंखा एसी कूलर आदि का प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन ये तामसिकता का जो इफेक्ट है वो केवल बाहर ही नहीं रहता, घर में भी आता है और मनुष्य के मन में भी आता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब चारों तरफ तामसिकता का वातावरण दिनों दिन बहुत तेज होता जा रहा है तो आप समझ लीजिए उस वातावरण का प्रभाव आपके घर में भी अवश्य आएगा। ऐसे वातावरण से सुरक्षा का ब्राह्मण कुलभूषणों के पास योग युक्त वातावरण घर में बनाकर रखना ये बाहर की तामसिकता से घर के वातावरण का बचाव करना है। और मन में भी तामसिकता आ सकती है, उसके लिए बार बार स्मृति में लाना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। गर्मी का मौसम होता है, घर में भी गर्मी है तो खाता भी मुझ ठंडी चीज है, शरबत ले लो, नींबू का पानी ले लो, कुछ ऐसी चीज ले लो जो अंदर ठंडाई पहुंचे। ठीक बाबा भी बच्चों को कहते हैं ऐसे तामसिकता के वातावरण से स्वयं को बचाए रखने के लिए जो आप आत्माओं का शांतमय स्वरूप है उस स्वरूप को बार बार चिंतन में लाओ और उस स्वरूप की स्मृति में स्थित होते हुए अपनी शांति के प्रकंपन घर परिवार या सारे विश्व तक पहुंचाओ। ये मेरे बच्चों का काम है। अब हम कभी सोचें कि शांति दाता ही तो सारे विश्व को शांति दे सकता है, हम बच्चे भला विश्व को शांति क्या दे सकेंगे? लेकिन शांति दाता ने बच्चों को कितना महत्वपूर्ण उनका रोल समझाया कि बच्चे मैं तुम्हें शांति देता हूं क्योंकि तुमने मुझे पहचाना है और मुझे पहचान कर मेरे से संबंध जोड़ने की विद्या मेरे द्वारा आप बच्चों ने समझी है, इसलिए सारे विश्व की आत्माओं को और शांति और शक्ति के सहयोग के लिए मैंने विश्व में तुम बच्चों को निमित्त बनाया है। इसलिए विशेष जैसे बाप अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है तुम बच्चों का काम है बाप द्वारा दी गई जिम्मेवारी को निभाओ। बाबा ने हमको प्रत्यक्ष किया कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। हमारा काम है कि हम ऐसे बाप को सर्व विश्व की आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष करें कि बाबा कौन है और हम कौन हैं। ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए बाबा विशेष कहते हैं ब्राह्मण वही है जो ज्ञान सुनता है और सुनाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, शांत रहता है और सर्व को शांति में रखने का योगदान देता है। आप सोचिए बेहद का बाप बेहद विश्व की आत्माओं के लिए क्या नहीं कर सकते, लेकिन बेहद बाप ने विश्व की आत्माओं की ड्यूटी बच्चों पर रखी। तुम केवल मात्र निमित्त बन जाओ, मैं सर्व आत्माओं को तुम बच्चों के द्वारा शक्ति शांति और जो जिस आत्मा की आवश्यकता होगी मैं उस बच्चों की उस आवश्यकताओं को पूरा कराऊंगा। तुम केवल बच्चे माध्यम बन जाओ। जिस पर बात करते करते मुझे याद आ रहा है कि जब सिंध हैदराबाद में और कराची में अपना ईश्वरीय परिवार था और उस समय एक भयंकर घमासान हिंदू मुसलमानों का युद्ध चल रहा था और आप में से बहुतों को ये पता है कि पार्टीशन के 3 वर्ष पश्चात भी अपना विद्यालय वहीं रहा, कितना खून खराबा हुआ, कितना नुकसान हुआ, लेकिन बाबा के यज्ञ में आंच भी नहीं आने पाई। लेकिन इस यज्ञ में कौन था जो पहरा देता था? तो बाबा ने खास बच्चों के ग्रुप्स बनाए, 8-8, 10-10 बच्चों के ग्रुप्स बनाए, जो रात सारी या दिन सारा ऐसे ग्रुप वाइज योग में बैठते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हारे योग के वाइब्रेशंस बाहर की आत्माओं को भी प्रभावित करेंगे और इस किले की दीवार जब मजबूत होगी तो इस किले में कोई आक्रमण नहीं करेगा, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है। और यहां तक बाबा ने उस समय कह डाला कि जो ग्रुप योग में बैठेगा, अगर उस ग्रुप के समय किसी प्रकार का कोई भी हादसा होता है तो बाबा समझेगा इस ग्रुप में बैठने वालों की कोई कमजोरी थी, जिस कमजोरी के कारण इनका पहरा सही नहीं हुआ और इसके मध्य किसी ने भी नुकसान पहुंचाने का कुछ सोच लिया। तो बाबा एक एग्जाम्पल देते थे कि बच्चे जैसे कोई ग्रुप सॉन्ग होता है, एक ग्रुप में गीत गाया जाता है, जब ग्रुप में गीत होता है तो सबकी ट्यून, सबकी आवाज मिलनी चाहिए। अगर उन सब में किसी एक दो की आवाज ग्रुप की आवाज से नहीं मिलती लेकिन एक अलग सी आवाज निकालती है तो सारे ग्रुप का जो गीत है वो किसी को कानों में सूदिंग इफेक्ट एक अच्छा नहीं लगता है। ठीक दूसरे एग्जाम्पल बाबा देते थे कि ऐसा समझना जब हम योग में बैठे हैं इकट्ठा एक ग्रुप होकर के, तो ये ग्रुप फोटो है और अगर किसी एक ग्रुप फोटो के अंदर कोई एक भी बेढंगा सा बैठा है या कुछ मुंह बना रहा है या कुछ हाथ पात ऐसे करता है तो सारी फोटो का वो जो ग्रुप फोटो है वो ग्रुप फोटो बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक आलमाइटी बाबा उस समय संदेशी के द्वारा नाम भेजता था एक जैसी सम स्थिति की, वो आत्माएं वो बच्चे जो एक स्थिति वाले हैं इस समय उनका योग चलेगा, दूसरे दिन आज इनका योग चलेगा। और उनको यही इशारा देते थे, समझना ये ग्रुप सॉन्ग है या ग्रुप की फोटो है, इसलिए इस फोटो में एक का भी डिफेक्ट आया तो सभी का डिफेक्ट माना जाएगा। तो बड़ी अलर्टनेस रहती थी कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी ड्यूटी है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे आप बच्चों का भी संगठन बहुत बड़ा काम कर सकता है लेकिन वो संगठन जिस संगठन में सबका एक ही संकल्प होगा उसमें भिन्न भिन्न संकल्प ना हो। इसलिए हमने ऐसा सोचा कि यहां पर शाम के समय योग के कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे जाएं जिसमें उस दिन का श्रेष्ठ संकल्प सबको दे दिया जाए और उसी संकल्प में सभी स्थिर होकर बैठे और एक संकल्प की स्थिरता बहुत बड़ी शक्ति का काम करता है। हम अपनी प्राचीन गाथाएं सुनते हैं कि ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर एक ही संकल्प में चिंतन में बैठ जाते थे, बहुत सिद्धियां प्राप्त करते थे और जब वे सिद्ध पुरुष बनते थे, बाहर आते थे, तो उनका एक एक बोल किसी अन्य प्राणी के लिए वरदान का रूप बन जाता था। वह था अल्पकाल किसी प्राणी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनकी एकाग्र तप का ये प्रभाव जो अल्पकाल का आत्मा प्राप्त करते थे। और हम बच्चों को बाबा कहते हैं विश्व पिता के बच्चे सारी विश्व की आत्माओं के लिए निमित्त हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को साक्षात देने के लिए, साकाश देने के लिए, शक्ति देने के लिए, बल प्रदान करने के लिए तुम बच्चों का संगठित एक ही संकल्प बहुत बड़ा कार्य करेगा। इसलिए बच्चे ये केवल थोड़े टाइम बैठने से नहीं होगा लेकिन बहुत काल के अभ्यास की अभ्यस्त आत्माएं जब किसी एक अभ्यास में बैठती हैं तब उनके अभ्यास का वो वातावरण बनता है जो सर्व आत्माओं को सहयोग दे सकता है। कई बार कई ऐसा कह देते हैं कि हम बहुत शांत रहना चाहते हैं या सकारात्मक चिंतन करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे संग, कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि शांत रहना चाहते हुए भी हम शांत रह नहीं पाते। कोई शांत रहने ही नहीं देता और बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे कभी किसी की तरफ उंगली ना करना। ये मुझे रहने नहीं देते, क्यों नहीं ये कहते कि मैं कुछ समय तो रह सका या रह सकी लेकिन उसके पश्चात मेरे पास इतनी समर्थ नहीं थी कि मैं शांति या उस मनोस्थिति जिस स्थिति में मैं दृढ़ रहना चाहती थी मैं रह सकती। क्योंकि ज्ञान हमें हमारे को भी देता है बल और हमसे अनेकों को बल देता भी है और अनेकों की कमजोरियों के प्रभाव से अप्रभावित रहें, प्रभावित ना हो पाए इसका बल भी देता है। कितना अच्छा एक एग्जाम्पल है कि एक अंधा मनुष्य है, घर से चलता है, एक लालटेन ले लेता है। अब जली हुई लालटेन लेकर चल पड़ा। अब जब व्यक्ति अंधा है तो लालटेन लेकर जब जाएगा तो उसे तो रास्ता दिखाई देगा भी नहीं, तो लालटेन का क्या फायदा। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो लालटेन उसके लिए नहीं होती है लेकिन वो लालटेन उसका बचाव इस रूप से करती है कि सामने आने वाला उसे टकरा ना जाए, वे लालटेन प्रकाश दे ताकि कोई दूर से देखकर समझ जाए कि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है। कई बार आप हम सब ने देखा भी है गांव के किसी साइड में चले जाओ तो कभी कभी बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी जाती है जो सीधी रोड में उसको जाना है तो उनके यहाँ नीचे लालटेन जगती हुई है, गाड़ी को चलाने वाला भी सोया हुआ है और बैल भैंसा तो नहीं देख रहा लालटेन से रास्ता दिखाई दे रहा है तो मैं इस रास्ते पर चलूंगा। ये बैल या भैंसे के लिए नहीं है, लेकिन सामने से आने वाले व्हीकल के लिए है कि वो उसे टकरा ना जाए, उसे मालूम पड़े कि सामने से कोई आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल दिया कि जब एक अंधा लालटेन लेकर जा रहा था जो दूसरे को रास्ता दिखाती, लेकिन अचानक कोई आकर उसे टकरा गया, और जब उसे टकरा गया तब उस अंधे ने ये बोला उस समय, क्या तुम भी अंधे हो जो मेरे से टकरा गए? तब टकराने वाले ने ये उत्तर दिया कि मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन तेरी लालटेन बुझी हुई है, इसलिए मेरी ठोकर तेरे से लग गई है। तो वो लालटेन जहां उसको सुख दे रही है, वहां सामने वालों को भी धोखा खाने से बचा रही है। तो बाबा हमको हमेशा कहते हैं कि बच्चे, ये ज्ञान की स्थिति ना केवल तुम्हें ही सुख देगी, लेकिन अन्य आत्माओं को भी सही रास्ता दिखाए रखने के लिए, तुमसे कोई टकरा ना पाए उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि रतन मोहिनी दादी जी आ गए हैं। ओम शांति।